सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वर्चायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् देतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार सूत्र है जो उमा स्वामी आचार्य ने लिखा हुआ है, उसका जो दूसरा अध्याय है इसी तत्वार सूत्र ही को मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं। इसके दूसरे अध्याय पर अपने अभी चर्चा शुरू हो जाएगी। इस दूसरे अध्याय में यहाँ जीव के भावों की चर्चा है, जीव के जो असाधारण भाव है उसकी चर्चा है। पहले अध्याय में तो जीव तत्व का सात तत्वों का स्वरूप देखा था ना, सात तत्व याद है ना सरलबित, बोलो कौन से है। हाँ, जीव तत्व, अजीव तत्व कहना, हाँ हाँ हाँ, पुण्य तत्व कहेंगे तो नौ हो जाते हैं, तो हमें सात में ही इंक्लूड करना है पुण्य पाप को, तो हम क्या कहते हैं, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व। यानी तत्वों के नाम जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये सात तत्व है। इसी को प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। प्रयोजनभूत यानी वो कार्यकारी है, किसके लिए, ये ऐसे तत्व है कि जिनको जाने बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती। हमारा सबका प्रयोजन हमने कल देखा था कि सुख चाहे दुखते भयवंत, प्रत्येक प्राणी प्रत्येक संसारी सुख चाहता है और दुख से डरता है, तो सुख प्राप्त करना ही उसका प्रयोजन भूत है, प्रयोजन है। तो ऐसे तत्व कि जिनको जाने बिना सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, इस जीव को मोक्ष मार्ग शुरू ही नहीं हो सकता, तो उसको कहते हैं प्रयोजन भूत तत्व। उसमें से हम बाकी तत्वों की चर्चा तो चढ़ाला में भी आएगी, अभी हमारा प्रयोजन जीव तत्व को समझने का है। तो जीव द्रव्य को तो हमने देखा था बहुत विस्तार से, आपका यहां अभ्यास भी हुआ है ना द्रव्य का, कि गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुणों और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और उसकी विस्तार से चर्चा भी आपने सुनी है सिद्धांत प्रवेशिका में। अब यहां जो जीव है उसके जो भाव है उसकी चर्चा चलेगी। देखो हम यहां प्रारंभ करते हैं पढ़ना, आपके पास ग्रंथ भी होगी, गुजराती का पाना पान नंबर पृष्ठ कॉपी है आपके पास, हिंदी बहुत अच्छी बात है,
गुजराती में
171, हाँ 171 में पानू छे गुजराती में, हिंदी है 178 178। मोक्ष शास्त्र अध्याय दूसरा क्या लिखते, देखिए पहले अध्याय में सम्यक दर्शन के विषय का उपदेश देते हुए, सम्यक दर्शन का विषय यानी यहां सात तत्वों की जो श्रद्धा है, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा है, तो उसको सम्यक दर्शन का विषय का, ये जो सात तत्व कहे ना, तो उसमें प्रारंभ में जीवादिक तत्व कहे थे। अध्याय एक सूत्र चार में सात तत्वों के नाम लिखे थे जो अभी अभी हमने देखे हैं। उनमें से जीव तत्व के भाव, उनका लक्षण और शरीर के साथ के संबंध का वर्णन इस दूसरे अध्याय में है। क्या कहना चाहते हैं, ये जीव तत्व का क्या भाव है, भाव यानी उसका क्या स्वरूप है, भाव को गुण भी कहते हैं, तो जीव तत्व को कैसे पहचानना, अन्य द्रव्यों से या अन्य तत्वों से वो कैसा भिन्न है, उसकी बात हम इसमें देखेंगे, उनके लक्षण भी देखेंगे। और शरीर के साथ का संबंध जो अभी हमारी शाम को बात चल रही है, शरीर के साथ के संबंध के द्वारा जीवों को हम एकेंद्रिय जीव, द्विंद्रिय जीव, तीनद्रिय जीव, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव आदि जो पहचानते हैं, वो शरीर के साथ के संबंध सहित जीवों का वर्णन देखते हैं, उसमें कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं उसकी चर्चा है। और यहां तो जीव के जो जीव द्रव्य के जीव तत्व के जो भाव है उसकी बात यहां चलेगी। तो इस दूसरे अध्याय में तो इसी का वर्णन चलेगा। पहले जीव के स्व तत्व यानी निज भाव बताने के लिए सूत्र कहते हैं। ये निज भाव और परभाव उसकी बात यहां नहीं, निज भाव यानी जीव के अपने भाव कि जो जीव में पाए जाते हैं, अन्य जीवों अन्य द्रव्यों में जो नहीं पाए जाते उसको यहां जीव के असाधारण भाव कहा है। देखो गुणों में भी हमने देखे थे कुछ सामान्य गुण होते हैं और कुछ विशेष गुण होते हैं। तो क्या विशेष गुणों को हम ये भाव कह सकते हैं? अभी तो हमने नहीं देखे ना, तो फिर बाद में इसकी चर्चा करेंगे तो अच्छा रहेगा। परंतु विशेष गुण तो हम उनको कहेंगे कि वो जीव में हमेशा ही पाए जाएंगे, वो गुणों की चर्चा है। अब यहां जो भाव है उसमें तो कुछ तो स्वभाव है जो पारिणामिक भाव है और जो बाकी जो चार भाव है वो पर्याय रूप भाव है। इसलिए इन भावों को असाधारण भावों को हम गुण नहीं कह सकते, क्योंकि हम अभी देखेंगे इसमें जो औदयिक भाव है, क्षायिक भाव है, औषमिक भाव है, वो तो पर्यायों की बात है, और पारिणामिक भाव है वो तो जीव का अनादि अनंत स्वभाव भाव है। तो इसलिए असाधारण भावों में हम विशेष गुणों की चर्चा नहीं कर रहे। विशेष गुणों की चर्चा तो शाम के वो अपने अन्य क्लास में चलेगी। अब यहां हम जीव के जो असाधारण भाव है वो पर्याय रूप है के स्वभाव रूप है उसके हम क्लासिफिकेशन करेंगे, उसके नाम देखेंगे और हरेक का स्वरूप भी देखेंगे। पांच भावों का स्वरूप जानते ही हमें जीव का बहुत स्पष्ट रूप से उसका स्वरूप ख्याल में आता है। तो अभी ये पांच भाव कौन से हैं? तो उसके लिए सूत्र पहला पढ़ते हम। देखिये ये तत्वार सूत्र नाम है। तत्व यानी जो है उसका वह भाव उसको तत्व कहते हैं, तत्व। और अर्थ यानी पदार्थ, पदार्थ का जो भाव है और उसको सूत्रों में यहां निबद्ध किया है, सूत्रों में बताया है। सूत्रों की ऐसी विशेषता होती है कि मिनिमम पॉसिबल वर्ड्स में और अक्षरों में मैक्सिमम पॉसिबल पूरा भाव उसमें बता देना, यह सूत्र की विशेषता है। क्योंकि हम तो देखते हैं ना ग्रंथ है या टीकाएं हैं या विश्लेषणात्मक है, तो कितने ही एक एक सूत्र पर कितने बड़े बड़े ग्रंथ ही लिख गए। तत्वार सूत्र तो पूरी सूत्रात्मक रचना है। अभी ये जो आपके हाथ में है वो उसकी टीका है। टीकाएं ने उसको विस्तार से समझाया है, एक एक सूत्र को विस्तार से समझाना उसको तो टीका कहते हैं। तत्वार सूत्र ऐसा महान ग्रंथ है तो उसके ऊपर अनेक आचार्यों ने अनेक टीकाएं लिखी है। आपको मालूम है क्यों कोई टीका तत्वार सूत्र के ऊपर? हाँ, सर्वार सिद्धि, सर्वार सिद्धि नाम की एक टीका है। बहुत सारे अमृतचंद्राचार्य ने भी इसके ऊपर टीका लिखी है, तत्वार सार, तत्वार सार उसका नाम है। ऐसे ये बहुत सारी टीकाएं तत्वार सूत्र ग्रंथ, ये जो राजवार्तिक है, श्लोक वार्तिक है, ये सारे पहले भी वो गंध हस्ती महाभाष्य नाम की टीका जो अभी उपलब्ध नहीं है, उसका मात्र देवागम स्त्रोत्र ही उपलब्ध है। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी टीकाएं इस पर लिखी है। तो सूत्र में और ये जो टीका है ना राजवार्तिक आदि, उसमें क्या चर्चा है? ये च शब्द क्यों डाला, ये नहीं डालते तो ये एक्स्ट्रा हो गया, तो फिर वहां उस पर बहस चलती, उस पर चर्चा चलती, नहीं आवश्यकता। कहीं कहीं लिखेंगे यहां तो ये शब्द आया नहीं, आपने कहां से अर्थ निकाला? तो कहते ये पहले सूत्र से ये अनुवृत्ति यानी उसकी जो कंटिन्यूटी चली आ रही है पहले सूत्र से, तो सूत्र उसे ही कहते हैं कि उसमें ये देखा जाता है कि कम से कम शब्द हो। तो अभी हम इस सूत्र को पढ़ेंगे। देखो कितनी बुद्धिमान होंगे जिन्होंने इसकी रचना की सूत्रों की, कि सूत्रों में पूरा ही पूरा माल तो है ही है। और फिर एक सूत्र याद हो गया, एक सूत्र बता दिया, तो सामने वाले शिष्य भी ऐसे थे। देखो शिष्य भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं संक्षेप रुचि वाले और एक होते हैं विस्तार रुचि वाले। यानी संक्षेप में बता दो तो वो ग्रहण करते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट भी होते हैं ना, और कोई ऐसे होते हैं कि थोड़ा विस्तार से समझा दो तो ख्याल में आते हैं। दोनों प्रकार के होते हैं, ऐसा कहीं नहीं कि ये वो ये अच्छा वाला है और ये बुरा, ऐसी कोई बात नहीं होती। आचार्य पहले तो संक्षेप से भी समझा देंगे और फिर उसी का विस्तार करके समझाएंगे। तो यहां हम सूत्र पढ़ेंगे अभी। यहां जीव के असाधारण भावों संबंधी ये सूत्र है, द्वितीय अध्याय का पहला सूत्र। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम् औदयिक पारिणामिकौ च। पहले में पहले औपशमिक और क्षायिक को एक जोड़ी ली, वो द्विवचन है, कौ लगाए ना, औपशमिक क्षायिकौ भावौ। अनेक वचन होता तो भावाहा कह देते, तो भावौ कहा, द्विवचन है दोनों, क्योंकि दो भावों को एक साथ बताया है, औपशमिक और क्षायिक। अब कहते हैं मिश्रश्च, और मिश्र है ये जीव के, क्या है, स्वतत्वम, स्वतत्व है, और कौन कौन से भाव है, औदयिक पारिणामिक उच्च, ये दोनों को फिर एक साथ बताया। तो ये जो पांच हुए, औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, मिश्र भाव कहो या क्षायोक्षमिक भाव कहो, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव, ये सभी क्या है, स्वतत्वम। भावों की तो अनेकता है, परंतु ये सब मिलकर स्वतत्व है, उसके लिए एक वचन लगाया। जैसे पहले अध्याय के पहले सूत्र में याद है कौन सा है पहला सूत्र, तत्वार सूत्र का सबसे पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग एक वचन है, और ये चारित्राणी यानी तीनों को अनेक वचन लगाए। तीनों मिलकर तो अनेक है, तीन है, परंतु तीनों मिलकर एक मोक्ष मार्ग है, वो जैसे बताना था वैसे यहां भाव तो पांच है, परंतु वे सब मिलकर स्वतत्वम है, स्वतत्व है, स्वतत्व तो एक है, और उस स्वतत्व ने मेरा तत्व कौन सा है, तो जीव तत्व। जीव तत्व की बात चल रही ना, हमारा जो स्वतत्व है वो जीव तत्व है, तो उसमें ये पांच असाधारण भाव है, उसकी यहां चर्चा चलेगी। देखो इसका अर्थ कहते हैं, जीवस्य यानी जीव के औपशमिक क्षायिकौ, औपशमिक और क्षायिक भावौ यानी भाव, च मिश्र और मिश्र, तथा औदयिक पारिणामिकौ च, औदयिक और पारिणामिक, यह पांच भाव स्वतत्वम निज भाव है, अर्थात यह जीव के अतिरिक्त दूसरे में नहीं होते। जीव के अलावा अन्य जो है तत्व या द्रव्य, उनमें ये भाव नहीं पाए जाते, इसलिए इसको जीव के असाधारण भाव कहने में आता है। अब जो टीका है, इन्हीं पांच भावों संबंधी उसकी परिभाषा है और उसका जो विवेचन है उसको हम देखेंगे। उसके पहले पहले हमें फिर दोबारा इसको देखना है, उसके नाम कौन कहना चाहता है, पांचों भावों के नाम बताने। हाँ बेन, बताएंगे आप, औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, हाँ, औदयिक भाव और पारण। बहुत अच्छा, सबको आता है और यहाँ लिखा भी है ना हमने। तो ये पांच भाव है। तो देखो ये पांच भावों में हम देखते हैं कि ये जो सभी संसारी और मुक्त जीव है, तो पहले मुक्त जीवों की बात करेंगे कि संसारी की करेंगे, हाँ? आप कहेंगे हमारी बात हम पहला चाहते हैं। तो अभी जो संसारी जीव है, हम तो ऐसा भाव पहले देखेंगे वो संसारी और मुक्त दोनों में ही पाया जाएगा। कोई भी जीव ऐसा नहीं होगा कि जिसमें ये भाव नहीं है। ये पांच भावों में से ऐसा कौन सा भाव है कि जिसके बिना कोई जीव ही नहीं होता, अनिरेन भाई? जो जिस भाव के बिना कोई भी जीव नहीं है, संसारी कहो या मुक्त कहो, ऐसा कौन सा भाव है इन पांच भावों में, कौन कहना चाहते हैं? हाँ, पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव के बिना कोई भी जीव नहीं है।
मुझे लगा कि आप पूछ रहे किसमें कोई भी भाव नहीं होता।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पारिणामिक भाव किसी में नहीं, ऐसा जीव ही नहीं हो सकता।
वही वही वही,
यानी हाँ, दूसरा उल्टा। हाँ, हमने दो निगेटिव बोले ना। बिना कोई जीव नहीं है, यानी उसका अर्थ क्या है, सभी जीवों में पारिणामिक भाव तो पाए ही जाएगा, बराबर? हाँ, अब आगे हम बढ़ेंगे। तो ये संसारी और मुक्त में से हम संसारी की बात करेंगे। तो संसारी जीवों में पारिणामिक भाव है, ये तो सिद्ध ही हुआ। इन एडिशन ऐसा कौन सा भाव है जो सभी संसारी जीवों में पाया जाता है? पारिणामिक तो है, हमने उसको एक्सेप्ट किया, उसको तो पहले नंबर पर लिखा कि पारिणामिक भाव संसारी में भी है और मुक्त में भी है। अब संसारी में ऐसा कौन सा भाव है जो सभी संसारी में होता ही है? औदयिक भाव। तो औदयिक भाव के बिना कोई संसारी जीव नहीं है। अरिहंत भगवान संसारी है क्या मुक्त है? सरला बेन, शरीर है ना, हम कहा नहीं पर देखो संसारी किसको कहना? शरीर तो विग्रह गति वाले को नहीं है, जो औदारिक शरीर, क्या कहेंगे उसको? देखो कर्म, कर्म जिसको है ना, आप कहेंगे ना, आपका ही कहना बताना है तो आप कहेंगे कारमान शरीर है कि नहीं वहां पर। हाँ, घबराते क्यों हो? तो कहते हैं जहां जहां कर्मों का बंध है, कर्म बंध से युक्त जीवों को संसारी कहते हैं। अरिहंतों को भी कर्म का है बंध, अभी पूर्ण रूप से छूटेंगे तो उनको मुक्त कहेंगे हम। तो अरिहंत भी संसारी है। हाँ हाँ, परंतु कर्म है ना, कर्म इन जनरल हम बात कर रहे हैं, घाती क्या घाती है वो तो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ प्रश्न है, अभी अभी हमने एक स्टेटमेंट क्या देखा कि औदयिक भाव के बिना कोई संसारी जीव नहीं है, यानी सभी संसारी जीवों को औदयिक भाव होता ही है। तो क्या अरिहंतों को औदयिक भाव होगा या नहीं होगा? कौन सा औदयिक भाव होगा? क्योंकि अभी हमने औदयिक भावों की लिस्ट नहीं पढ़ी है। हाँ हाँ हाँ, देखो कर्म का होना औदयिक भाव नहीं कहता है। यहाँ कर्म के उदय में जो जीव का भाव होता है ना, कर्म का उदय तो कर्म में है, और ये भाव कहाँ है? कर्म में है कि जीव में है? जीव। देखो नाव तो हाँ, राग द्वेष नहीं है, क्योंकि अभी हमने औदयिक भावों की लिस्ट नहीं देखी है ना। अभी बता देती हूँ कौन सा है, फिर वो कैसे है क्या हम डिराइव करेंगे। देखो आपको ये निकालना है ना, औदयिक भावों की जो लिस्ट है, आप लिस्ट देखकर फिर मुझे बताना इसमें से अरिहंतों को कौन से है, ये जो औदयिक भाव की बात आती है। हाँ, अरिहंतों को विभाव नहीं है, परंतु फिर भी औदयिक भाव है। ये विभाव भाव यानी मोहिनी वाले वो तो नहीं है। ये जो औदयिक भाव के 21 भेद बताए हैं, यहाँ देखना सूत्र नंबर 6, पेज है 190 हिंदी का। ओ सॉरी, हाँ कोई बात नहीं, मैं पढ़ती हूँ। देखो गति, चार गति है ना, ये नहीं लाया, पुस्तक है तो पुस्तक में देखना। गुजराती थोड़े एक दो कम हो गए, 5-6 पेजेस, 171 से शुरू हुआ था ना, तो यहाँ 190 में उतने कम करना, 7-8 पेजेस। 6 नंबर का सूत्र निकालना। हाँ देखो मैं पढ़ती हूँ, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। औदयिक भाव कौन कौन से है? तो चार गति, फिर क्रोध मान माया लोभ, 3 वेद, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व, और 6 लेशाय, इनको कहते हैं औदयिक भाव। तो हमें अरिहंतों में कौन सा औदयिक भाव है देखना है। तो इनमें से कौन कौन सा औदयिक भाव है अरिहंतों के? हाँ, वो मनुष्य गति के जीव है, गति औदयिक भाव है। देखो यहाँ मोहनीय कर्म का उदय नहीं है, चार घाती कर्मों का तो नाश हुआ है, परंतु नाम कर्म में जो मनुष्य गति नाम कर्म है, उसके उदय में जीव में औदयिक भाव चलता है। देखो ये सब जो नाम है ना, उपशम जब कहेंगे तो कर्म में होता है, और औपशमिक भाव जीव में होता है। ये जीवों के भावों की चर्चा चल रही है। देखो कर्म के नाम और जीव के भावों के नाम, इनमें सिमिलैरिटी होगी। जैसे मिथ्यात्व नाम का कर्म है, आपने सुना है कि नहीं सुना? दर्शन मोहनीय का एक भेद है मिथ्यात्व नाम का कर्म, और जीव में उसके उदय में जो भाव होता है उसको क्या कहते हैं? मिथ्यात्व भाव। क्रोध नाम का कर्म भी है, और क्रोध नाम का जीव का भाव है। रोज करते हैं ना हम, अरे उससे तो हम परिचित है कि नहीं है? तो वहां चारित्र मोहनीय कर्म है, उनके भी नाम ऐसे ही अनंतानुबंधी कर्म, और जीव में जो भाव होते हैं उनको हम कहते हैं अनंतानुबंधी के क्रोधमान माया रूप लोभ रूप भाव जीव में होते हैं वो भाव है और सामने जो उदय है वो कर्म का है। तो कर्म का उदय कहलाएगा और उसके उदय के निमित्त से जो यहाँ भाव जीव करता है स्वयं अपनी योग्यता से, उसको कहते हैं औदयिक भाव। समझ में? भाव और कर्म में, उदय तो कर्म में है और जीव जो भाव करता है उसको औदयिक भाव कहने में आता है। तो अभी हमारा क्या प्रश्न था, अरिहंतों में कौन से औदयिक भाव है? अभी आपके सामने लिस्ट है चार गतियों में से, सूत्र छह नंबर का सूत्र है, पुस्तक किसके पास है, अध्याय दो सूत्र छह, 190 पेज था। तो गति औदयिक भाव है, मनुष्य गति उनके हैं। क्रोध मान माया लोभ है कि नहीं है? और वेद? वेद भी नहीं है। मिथ्या दर्शन अज्ञान और असंयम का तो कोई सवाल ही नहीं है। वो सिद्ध बने कि नहीं बने अभी? नहीं। तो असिद्धत्व भी भाव है। अभी हमारा वो विषय आगे चलेगा, परंतु हमने अभी जो स्टेटमेंट किया था उसके लिए हमने आगे का सूत्र पहले ही देख लिया है। हमारा तो पहले सूत्र का ही यहाँ व्याख्यान चलेगा और अभी हम उसी को देख रहे हैं। पहले हमने दो स्टेटमेंट अभी तक किए हैं। ये जो पांच भाव है उनमें पहला हमने क्या देखा कि पारिणामिक भाव के बिना कोई भी जीव नहीं है, यानी प्रत्येक जीव में संसारी हो या मुक्त हो पारिणामिक भाव होता ही है, एक बात। दूसरा स्टेटमेंट ऐसा हमने देखा था कि औदयिक भाव के बिना कोई भी संसारी जीव नहीं है। संसारी जीवों में अरिहंत भी आ गए तो प्रत्येक संसारी जीव में औदयिक भाव पाया ही जाता है। इसके लिए फिर अरिहंतों के कौन सा होता है उसकी बात हमने देख ली। अभी जो तीसरी बात है क्षयोपशमिक भाव, हाँ देखो लेशा में तो जो कषाय के उदय रूप जो लेशा है उसको लेना है, इसलिए यहाँ शुक्ल लेशा को नहीं लिया। अरिहंतों में, अरिहंतों में तो ही औदयिक भाव लिए है। ये लेशा वाला जो औदयिक भाव है वो मोहनीय के उदय में होने वाला लेशा भाव को औदयिक भाव में गिना है, इसलिए उसको नहीं लिया।
और ये मनुष्य गति लिया है मगर पुरुष वेद नहीं लिया है।
हाँ, क्योंकि हाँ देखो बहुत अच्छा है आपका प्रश्न, ऐसा है यहाँ मनुष्य गति तो ली है परंतु पुरुष वेद वाला औदयिक भाव नहीं लिया है। देखो यहाँ भावों की चर्चा है ना, तो जब वेद की बात है तो वेद दो प्रकार का होता है, एक भाव वेद और एक द्रव्य वेद। जो शरीर का चिन्ह है उसको द्रव्य वेद कहते हैं। जैसे पुरुष जीव ही मुनि अवस्था पूर्वक अरिहंत अवस्था पाता है, यानी मुनिराज जो है भावलिंगी संत पुरुष होते हैं और वे ही अरिहंत अवस्था पाते हैं, तो उनका द्रव्य वेद कौन सा है? पुरुष वेद, यानी पुरुषों को ही उस भाव में मोक्ष अवस्था प्राप्त होगी। सरलाबेन कहते कि ऐसे आप पार्शलिटी क्यों करते हो, तो स्त्रियों को भी मुक्ति दिला दो ना। क्यों बेन, क्या स्त्रियां मुक्ति नहीं चाहती? चाहती है। तो क्या मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? क्यों नहीं मिल सकती? अपने को स्त्री मानना छोड़ दो, मैं जीव हूं, तो भले उस भाव में नहीं मिलेगी परंतु जब एक बार सम्यक दर्शन हो जाता है तो उस जीव को निश्चित रूप से पुरुष पर्याय ही मिलती है। और फिर वो कालांतर से, और अभी भी इस भाव में जो कोई पुरुष भी सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा तो मुनि अवस्था तक ही जाने वाला है। अन्य भी जो कोई निमित्त बनते हैं सहज रूप से, जैसे सहनन का भी नियम है, वज्रवृषभ नाराज सहनन के बिना कोई उस भाव में मोक्ष नहीं जाता। चरम शरीरी होता है वो वज्रवृषभ नाराज सहनन वाला ही होता है, उसके बिना उसके क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता। और इस पंचम काल में नीचे के तीन ही सहनन पाए जाते हैं। वैसे ही स्त्रियों को भी इस स्त्री पर्याय में मुक्ति नहीं है, परंतु वो जीव अपने को जब तक स्त्री मानता रहेगा तब तक वो उसको सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। स्त्री पर्याय में हूं ये जानना अलग बात है, और मैं जीव हूं के बदले मैं स्त्री हूं ऐसी ही मान्यता चलती है तो उसने अपने को मनुष्य रूप माना है, स्त्री मानो या पुरुष मानो। जब तक पुरुष भी अपने को प्राप्त पर्याय जितना ही मानता है, शरीर से भिन्न अपना स्वरूप नहीं जानता मानता, तब तक तो उसको सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। ख्याल में आता है ना, यहाँ कोई पार्शियलिटी की बात नहीं है। सहज जो निमित्त नैमित्तिक संबंध पाए जाते हैं उसका ज्ञान कराया जाता है। किसी को दुख लगने की आवश्यकता नहीं है, मुझे क्यों दुख लगेगा, मैंने अपने को स्त्री मात्र माना तो मुझे दुख लगेगा, परंतु जब मैं अपने को जीव मानती हूं, जीव जानती हूं, तो उसमें जीव ना स्त्री होता है, जीव ना पुरुष होता है। जैसे हम कहते हैं ना, जब मानव कहते हैं तो मानव कुछ हिंदू मुस्लिम और जैन नहीं होता, वो तो मानव मानव होता है। वैसे यहां पर हम अपने को जीव जब स्वीकार करते हैं तो जीव में कोई स्त्री पुरुष नहीं होता है। अब ये जो शरीर के संयोग की अपेक्षा, यहां जो वेदों का प्रश्न वेद संबंधी आया था, तो द्रव्य वेद जो है वो शरीर का जो लिंग है उसको द्रव्य वेद कहते हैं, और वो पुरुष को ही अरिहंत अवस्था यानी मुनि अवस्था और अरिहंत अवस्था प्राप्त होती है। अब यहां जो वेद को औदयिक भाव कहा है वो भाव वेद की बात है। भाव वेद यानी उस जीव के परिणाम, तो उस जीव के परिणाम जो है वो स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद तीनों प्रकार के हो सकते हैं। जन्म से जो वेद है वही वेद, भाव वेद वही चलता है उस लाइफ टाइम में, परंतु ऐसा करणानियोग के आधार से, गुणस्थानों के आधार से बताना है तो ये वेद का उदय नौवे गुणस्थान तक होता है। देखो यहां वेद का उदय है इसलिए वैसे उसके परिणाम में कुछ खोट है ये बात नहीं है। क्या होता है, देखो पांचवें गुणस्थान में ही ब्रह्मचर्य प्रतिमा है, कितने नंबर की है शिल्पा जी? ब्रह्मचर्य प्रतिमा श्रावक की प्रतिमाएं होती है ना, हाँ 7 नंबर की प्रतिमा है। तो वहां तो ब्रह्मचर्य के भाव है, मुनिराजों के भी ऐसे कोई परिणामों में कोई शिथिलता नहीं है, फिर भी वेद जो कर्म का उदय है वो नवे गुण स्थान तक पाया जाता है। इसलिए केवल ज्ञानी ये जो उसके सूक्ष्म भावों की अपेक्षा से वहां भाव वेद नवे गुण स्थान तक पाया जाता है, तो वेद जो औदयिक भाव है वो नवे गुण स्थान के पहले भाग तक ही होगा, उसके बाद नहीं होगा। इसलिए अरिहंतों में वेद नाम का औदयिक भाव नहीं है। नीरेन जी आपका प्रश्न का समाधान हुआ, द्रव्य वेद तो है, भाव वेद नहीं है, क्योंकि उसका अभाव हो चुका है। अभी उनको अपगत वेदी कहेंगे या अवेदी कहेंगे? हाँ, अपगत यानी निकल गया है वेद जिनका, अपगत गया है निकल गया है, या अवेद यानी अभी वेद नहीं रहा, तो उनको हम कहते हैं अवेदी। तो कर्म का उदय भी नहीं है और यहां जीव में औदयिक भाव भी नहीं है। ये जो उदय कुछ कराता नहीं है, फिर भी जब जीव स्वयं उस रूप परिणमता है तो सामने कर्मों का उदय भी पाया जाता है, तब ये निमित्त नैमित्तिक भाव होते हैं। निमित्त की चर्चा अपनी चली थी ना पहले कुछ, हाँ रहस्य ली थी ना यहाँ पर आपने ली थी कारण कार्य रहस्य में से, अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां क्या कहा कि जो औदयिक भाव के बिना कोई संसारी नहीं है, तो क्षौक्षणिक भाव की बात अभी हम उठाएंगे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना। तीसरा हमारा स्टेटमेंट होगा क्षायोपशमिक भाव, ये कौन कौन जीवों में पाए जाएंगे, कहां कहां पाया जाता है क्षायोपशमिक भाव? अरिहंत भगवान के हैं क्या क्षायोपशमिक भाव?
नहीं नहीं, अरिहंत
भगवान के और कौन से? हाँ देखो आपका प्रश्न है अरिहंत भगवान के कौन से औदयिक भाव है, एक तो है गति औदयिक भाव और दूसरा है असिद्धत्व भाव, क्योंकि अरहंत कौन से गति के जीव है? हाँ भाई आप कौन से गति में से जीव भगवान बन सकता है? आपको मालूम है देव गति के जीव क्या वो भगवान बन सकते हैं, मुनि बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, क्योंकि मुनियों का तो छठा सातवां गुणस्थान है सामान्य रीति से, देवों के तो पांचवा गुणस्थान भी नहीं होता, उनके तो चौथा मैक्सिमम चौथा गुणस्थान, सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकते हैं, उसके ऊपर की भूमिका ना देव में होती है ना नारकी में होती है। तिरियंचो में पांचवें गुणस्थान तक का पुरुषार्थ हो सकता है, और मनुष्यों में कितने गुणस्थान का होता है? 14वें गुणस्थान करके पार होके सिद्ध भी बनता है। तो ये सिद्ध यानी मुनि दशा पूर्वक अरिहंत होकर सिद्ध बनने का जो कार्य है वो मनुष्य गति में होता है। तो अरिहंत भगवान किसी गति में है क्या? वो गति पार कर चुके हैं, मनुष्य है वे, मनुष्य गति में है। कल हमने देखा था ना मनुष्य लोक में रहते हैं, वो मनुष्य है, वो मुनिराज है, मुनिराज अभी अभी तो बैठे थे, शास्त्र लिख रहे थे और वो अपने अंतरंग में लीन हुए, शपक श्रेणी चढ़कर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तो क्या मुनिराज तो मुनिराज से भिन्न अन्य कुछ बन जाएंगे? क्या मुनिराज ही दिखेंगे? मुनिराज ही दिखेंगे ना, तो ये मुनिराज है, इसीलिए उनको महामुनि भी कहा है। वो मनुष्य गति के जीव है, हम भगवान उनको कहेंगे क्योंकि वे हमके अभी उनके केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, पूर्ण वितराग हुए हैं। तो जो मुनिराज थे पहले छठे सातवें गुणस्थान वाले, वे ही अभी केवल ज्ञानी सर्वज्ञ बन गए हैं, पूर्ण वितराग बन गए, अभी उनको हम अरहंत कहते हैं। तो ये गति औदयिक भाव और असिद्धत्व नाम का औदयिक भाव उनके पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्षायोक्षमिक भाव किन में पाया जाता है? हमने जैसे पहला स्टेटमेंट क्या किया था, पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव नहीं। दूसरा स्टेटमेंट, औदयिक भाव के बिना कोई संसारी जीव नहीं। वैसे ही तीसरा स्टेटमेंट है कि क्षायोक्षमिक भाव के बिना कोई छद्मस्थ जीव नहीं है। ये छद्मस्थ किसको कहना? छद्म का अर्थ जानते हैं आप? आवरण। छद्म है ना आवरण, और आवरण में रहने वाला। इस कौन से आवरण की बात चल रही है यहाँ पर? हाँ बेन, शरीर रूपी आवरण। आप क्या कहते रंजन बेन? कार्मण वर्गणा सभी लेना नहीं है, क्योंकि कार्मण वर्गणा तो अरिहंतों के भी है, परंतु उनके आवरण वाले कर्म नहीं है। तो अभी हाँ बोलो। तो घाती कर्मों में भी आवरण नाम किसका किया? आपके चार घाती कर्मों के नाम लेना आप, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। आवरण शब्द कहाँ आया? ज्ञानावरण और दर्शनावरण, ये दो आवरण वाले कर्म है। तो जब तक आवरण है तब तक केवल ज्ञान नहीं है। जब तक ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म का आवरण है तब तक यहां जीव के केवल ज्ञान और केवल दर्शन नहीं पाया जाता। यानी जब जीव केवल ज्ञानी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, दूसरी भाषा में अरिहंत होते हैं, तब उनके वो आवरण छूट जाता है, तो आवरण का क्षय हो जाता है, तब उनके ज्ञान को हम क्षायिक कहेंगे। जब तक आवरण का क्षय नहीं हुआ है उसके पहले क्या ऐसी बात होती है कि किसी जीव को पूरा का पूरा आवरण आ जाए? मान लेते इतना ये ज्ञान है तो ये ज्ञान पूरा ही ढक जाए, निगोद की बात चलेगी ना शाम को, क्या निगोद में ऐसा होगा कि वो जड़ हो जाएगा, जीव जड़ हो जाएगा, ऐसा होगा कभी? नहीं, उसका थोड़ा तो ज्ञान खुला रहेगा ही। तो आवरण की ऐसी विशेषता होती है, जब तक ये केवल ज्ञान होता है तो पूरा ही आवरण छूट गया, पूर्ण ज्ञान विकसित हुआ, और बारहवें गुणस्थान तक क्या है, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक क्या होता है, थोड़ा खुला है ज्ञान, थोड़ा उघाड़ रूप है और थोड़ा अभाव रूप है। इसको कहते हैं क्षयोपशम। वो कर्मों में क्या अवस्था होती है वो बाद में देखेंगे। अभी हम गए वर्ष हमने तो पंचलब्धि में क्षयोपशम की भी परिभाषा देखी थी, अभी एक साल हुआ ना।
हाँ, जिसके सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन होता
है। आपका ऐसा प्रश्न है, हाँ आपका ऐसा प्रश्न है कि क्षयोपशमिक भाव तो जिसको सम्यक दर्शन हुआ है उसी को होता है, तो वहां तो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन की बात की, परंतु क्षयोपशमिक ज्ञान भी सुना है कभी? आपके पास क्षयोपशमिक ज्ञान है कि नहीं?
जिसका थोड़ा उघाड़ा
है। अरे निगोद जीव में भी क्षयोपशमिक ज्ञान है, क्योंकि थोड़ा ये मिथ्या है कि सम्यक है उसकी बात नहीं है। क्षयोपशमिक ज्ञान में ये ज्ञान मिथ्या है कि सम्यक है उस पर उसको क्षयोपशमिक नहीं कहते हैं। हाँ, एक सम्यक दर्शन में जरूर होता है कि कोई सम्यक दर्शन क्षयोपशमिक है, कोई औपशमिक है और कोई क्षायिक है, परंतु ज्ञान में या तो क्षायिक ज्ञान होता है जो सर्वज्ञ भगवान का केवल ज्ञान है, या क्षयोपशमिक ज्ञान है जो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि सबको होता है, वो पहला गुणस्थान वाला हो या बारहवें गुणस्थान वाला हो, उसका ज्ञान कैसा है? क्षयोपशमिक ज्ञान है। तो ये क्षयोपशमिक भाव हमने नहीं पढ़े थे ना, देखो अभी ये पांच नंबर का सूत्र निकालना। क्षयोपशमिक 18 भाव होते हैं, पेज नंबर 189 है हिंदी में, गुजराती में थोड़े कम हो गए, 182। हाँ, वो पांचवा सूत्र है ना, वो कौन कौन से, अभी हम डायरेक्ट उसका अर्थ देखेंगे, सूत्र तो हम क्रम से जब उसका नंबर आएगा तभी पढ़ेंगे ही। देखो कौन कौन से है, ये हमें शोभषम भाव कौन कौन से है उसको देखना है ना, 18 भाव है। तो ये जो मति, श्रुत, अवधि और मनपरी है, जब यह मति के आगे कुछ नहीं लगाया तो समझना सुमति ज्ञान, सम्यक दृष्टि के जो मति ज्ञान है, सम्यक ज्ञान के ये चार भेद है, कौन कौन से, मति, श्रुत, अवधि और मनपरी है, ये चार ज्ञान, ये भी क्षयोपशमिक ज्ञान है क्योंकि वहां कर्मों का क्षयोपशम पाया जाता है। तथा कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये मिथ्या दृष्टियों के जो पाए जाते हैं, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि का ही दूसरा नाम है विभंग ज्ञान। ये तीन अज्ञान कहा इसको, चार ज्ञान और तीन अज्ञान। देखो अज्ञान शब्द भी अलग अलग अर्थ में होता है, ये मिथ्या ज्ञान को यहां अज्ञान कहा है। 189 हिंदी है,
हाँ 189
वो हिंदी का 9 है ना, वो 6 जैसा दिखता है। हाँ, ये पुराने हिंदी वाली जो 9, 188 के बाद वाला पेज देखना आप। हाँ, ये ज्ञान कितने देखे क्षयोपशमिक, चार ज्ञान और तीन अज्ञान। हाँ, अब कहते चक्षु, अचक्षु और अवधि, ये तीन दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। केवल ज्ञानियों को कौन सा दर्शन होता है, अरिहंत भगवान को? हाँ सरला बेन, केवल दर्शन, केवल दर्शन। हाँ, क्योंकि उनका क्षायिक दर्शन है, हो अनंत दर्शन है ना उनके, एक क्षयोपशमिक भाव देख रहे हम। अरिहंतों को कोई भी क्षयोपशमिक भाव है नहीं, अरिहंतों को तो औदयिक में लिया था, उनके औदयिक और पारिणामिक दो भाव हुए थे। अभी हम छद्मस्थों की बात करते, छद्म यानी आवरण, आवरण के साथ जो रहते हैं उसको छद्मस्थ कहते हैं। पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक के जीवों को हम छद्मस्थ कहते हैं, वो भले एक इंद्रिय जीव है, उनको छद्मस्थ कहेंगे कि नहीं? हाँ, कहेंगे, कहेंगे ना, वो आवरण वाले है ना, और उनका ज्ञान का कुछ न कुछ उघाड़ चल रहा है, इसलिए उसको हम, उनको भी छद्मस्थ कहेंगे। तो अभी हमने जो चार ज्ञान और तीन अज्ञान देखे थे, उसमें से एकेंद्रीय जीवों को कौन कौन से ज्ञान या अज्ञान क्या होगा? हाँ शिल्पा जी के बाजू में, मैं तो नाम नहीं जानती। हाँ आप बोलना। हाँ एकेंद्रीय जीव है। हाँ तो उनको इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी है, हम तो गेस करना है ना, तो गेस आपका राइट है कि रॉन्ग है, क्यों है उसकी चर्चा भी करेंगे हम। यू जस्ट हैव टू गेस। ये मति, श्रुत, अवधि, मनपर्याय हमने क्या देखा अभी, ये सम्यक ज्ञान के भेद है। तो एकेंद्रियों को सम्यक ज्ञान होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो संगी पंचेंद्रिय नहीं है, उनमें तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद कोई एकेंद्रियों में नहीं जाता, और जो एकेंद्रिय पर्याय में है उस पर्याय में उनको सम्यक दर्शन होने का सवाल ही नहीं है। वे जीव जब पंचेंद्रिय हो जाए तब उनको हो सकता है। हाँ तो अभी तीन रह गए, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, इनमें से कौन कौन से ज्ञान होते हैं एकेंद्रियों को? हाँ बिल,
कुमति और
कुश्रुत। हाँ कुमति और कुश्रुत सभी जो जीव है छद्मस्थ, तो मति श्रुत ज्ञान तो सभी छद्मस्थों को होते ही होते हैं। कुअवधि किसको होगा? हाँ, मिथ्या दृष्टि को अवधि ज्ञान होता है, तो वो भी संगी पंचेंद्रियों में होगा। ये पहली बात, पहली कंडीशन क्या है, अवधि ज्ञान, कुमति हो या ये जो कुमति जो उसकी कुअवधि की बात चल रही है, कुअवधि की बात हम ले रहे हैं, मति की नहीं। तो कुअवधि ज्ञान संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि को होता है। अब उनमें से जो देव है और नारकी है उनको तो होता ही होता है, किसी मनुष्य को भी होता है और तिर्यंचों को भी होता है। मनुष्य तो संगी पंचेंद्रिय है ही है,
इसलिए बोले कि सम्यक दर्शन नहीं
है। हाँ सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए उनके अवधि ज्ञान को कुअवधि ज्ञान कहते हैं। उसके भी उसमें बहुत सारी डिटेल्स है, उसकी लिमिट कितनी होती है, उसके कितने कितने प्रकार होते हैं, हाँ? उसकी बात उसमें आती है। तो हमें तो बेसिक बहुत स्थूल रीति से अभी देखना है। हाँ एकेंद्रियों में कौन सा ज्ञान हमने अभी निश्चित किया? हाँ कुमति और कुश्रुत।
कुश्रुत में मन का आलम्बन नहीं आता।
हाँ आपका प्रश्न है, उनके मन नहीं है तो श्रुत ज्ञान होगा कि नहीं होगा। हाँ, स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा होता है उसको मति ज्ञान कहते हैं। ये बात तो चलेगी यहाँ पर, मति श्रुत ज्ञान आदि के डिटेल में ये जो ज्ञान के जो भेद है उसकी चर्चा चलेगी, परंतु यहाँ जो संगी पंचेन्द्रिय जीव होता है उसके इंद्रियों के द्वारा भी और मन के भी द्वारा ज्ञान होता है उसको हम मति ज्ञान कहते हैं। हम भी मन के द्वारा श्रुत ज्ञान नहीं, अभी मन के द्वारा जो होता है उसको हम मति ज्ञान कहते हैं, और मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के द्वारा जो अन्य पदार्थ का ज्ञान होता है उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। जैसे हम, आपने शक्कर ये नाम सुना, किसको सुना? शब्द को, शब्द को जाना, आवाज को जाना, कर्णेन्द्रिय के द्वारा आवाज को जाना, और आपने जाना किसको? शक्कर नाम के पदार्थ को, जो डब्बे में रखी है, सफेद होती है, मीठी होती है, तो ये अन्य पदार्थ को जाना, ये श्रुत ज्ञान हुआ, बराबर है ना? तो प्रश्न ऐसा है, एक इंद्रियों को तो अन्य इंद्रियों संबंधी ज्ञान नहीं है ना, मन का ज्ञान है, तो वे कैसे जानते होंगे? श्रुत ज्ञान कैसे होता होगा? हाँ, भावश्रुत तो आत्मा के ज्ञान को भावश्रुत कहते हैं। तो यहाँ जो उनके श्रुत ज्ञान होता है, जैसे एक इंद्रिय जीव, आपने देखा होगा आपके घरों में कोई प्लांट रखी है तो खिड़की के पास रखते हैं, तो कहाँ उनकी ग्रोथ होती है? सूरज की किरणों की तरफ, प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, या उनकी जड़ें कहाँ बढ़ती है? पानी की तरफ बढ़ती है। हम बड़े बड़े वृक्ष देखते हैं तो उनकी तो जड़ें तो पानी की तरफ बढ़ती रहती है। तो ये मुझे इष्ट है या अनिष्ट है, ऐसा जो उनके ज्ञान होता है, वो इन्फरेंस भी निकालते हैं ना, उसके लिए मन की आवश्यकता नहीं है, ये ज्ञान का कार्य है, तो उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो एकेंद्रियों में भी मतिश्रुत ज्ञान पाया ही जाता है। जितनी मात्रा में उनका स्पर्शन इंद्रिय संबंधी यानी ज्ञान जितना हीन है, श्रुत ज्ञान भी उतना हीन चलता है उनका। अभी हमारा ज्ञान का उघार ज्यादा है, मति ज्ञान के द्वारा हम ज्यादा, हमारा स्फीयर बड़ा है, पांचों इंद्रिय और मन के द्वारा जानते हैं, तो श्रुत ज्ञान का भी स्फीयर बड़ा है हमारा, ख्याल आता है ना? हाँ, तो ये ज्ञान संबंधी चर्चा तो शाम की चलेगी, अपना तो अभी भावों की चर्चा चल रही है। हाँ देखो क्या कहते हैं, क्षावश्रमिक दान लाभ भोग उपभोग वीर्य पांच लब्धियां, इस प्रकार ये 18 भेद, ये 15 भेद हुए। और आपने जो प्रश्न पूछा था सम्यक्त्व के बारे में, वो क्षावश्रमिक सम्यक्त्व, क्षावश्रमिक चारित्र और संयमा संयम, ये क्षावश्रमिक भाव के 18 भेद हैं। तो अभी जो प्रश्न हमें था, या अभी हमने जो स्टेटमेंट कहा था कि क्षावश्रमिक भाव के बिना कोई भी छद्मस्थ जीव नहीं है, यानी 12वें गुणस्थान तक क्षावश्रमिक भाव पाए जाते हैं, तो इसमें ज्ञान तो सबको है कि नहीं है? ज्ञान और वीर्य जो है, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, इसका क्षौपशमिक भाव तो सभी जीवों में है, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, और पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक सबके ये दान लाभ भोग उपभोग वीर्य जो है अंतराय के, तो उसके तो क्षौपशम भाव पाया ही जाता है, यानी वीर्य अंतराय का क्षौपशम हम कहेंगे इन शॉर्ट। और ज्ञान का भी क्षौपशम है, जो सम्य दृष्टि चौथे गुणस्थान से आगे वाले जीव है उनके जो ये ज्ञान यथा योग्य पाए जाएंगे वो उनका क्षौपशमिक भाव है, और जो मिथ्या दृष्टि के ज्ञान है उसको अभी क्षौपशमिक भाव है, यानी जो अनादि का मिथ्या दृष्टि है निगोद में पड़ा है उसका भी क्षौपशम भाव है कि नहीं है? हमें तो वो सिद्ध करना था, हम आगे जाके क्षौपशमिक भाव के नाम पढ़े, हमारा वो क्रम से तो आने वाला ही है, परंतु अभी थोड़ी उत्सुकता होती है ना कौन सा होगा ये सभी छद्मस्थों में भाव, तो ये ज्ञान और वीर्य का क्षौपशम भाव तो सभी जीवों में पाया जाता है, इतनी बात तो हम देखेंगे। फिर वो क्षौपशम सम्यक तो किसके और कब होता है उसकी चर्चा तो बाद में करेंगे। तो हमने तीन स्टेटमेंट अभी तक पढ़े हैं, अभी चौथा है कि क्षायिक भाव के बिना क्षायिक समकीति भाव, क्षायिक समकीति नहीं होगा, क्षायिक
दर्शन की बात नहीं की, दर्शन की ज्ञान की बात की,
किसमें
क्षावश्रमिक
भाव? तीन दर्शन भी है, ज्ञान है, वीर्य है और दर्शन है, ये 12वें गुणस्थान तक। हाँ, मेरा कहना रहे कि अच्छी बात है आपने याद दिलाया कि दर्शन का भी क्षावश्रमिक भाव है, जब तक केवल दर्शन और केवल ज्ञान नहीं होता तब ज्ञान दर्शन और वीर्य तीनों में सार्वक्षमिक भाव लगते हैं। तो सभी छद्मस्थों में सार्वक्षमिक भाव है, ये बात सिद्ध होती है। अब क्षायिक भाव की चर्चा करेंगे। तो क्षायिक भाव, अभी समय हो गया अपना?
दस मिनट।
अच्छा, ओके, बहुत अच्छा। तो क्षायिक भाव कहाँ कहाँ पाया जाता है उसकी भाव हम चर्चा करेंगे। तो शुरू पहले में पहले या कौन सा अर्लिएस्ट गुणस्थान है कि जहां क्षायिक भाव हो सकता है? चौथा गुणस्थान, जिसमें क्षायिक सम्यक तो होता है। चौथे गुणस्थान में क्षायिक ज्ञान होता है कि नहीं होता? हाँ बेन, सम्यक तो चारित्र, एक सम्यक तो कैसा हुआ क्षायिक, तो ज्ञान क्षायिक होगा कि नहीं होगा? वहां पर
होगा।
आप क्या कहते शिल्पा जी? हाँ, आपका क्या कहना है? क्षायिक होगा। रंजन बेन? नहीं, क्षायिक ज्ञान किसको कहते हैं? अभी तो हमने देखा बारहवें गुणस्थान तक के सभी जीवों को क्षायोपशमिक ज्ञान है, और जो केवल ज्ञान है उसको क्षायिक ज्ञान कहते हैं। तो क्षायिक सम्यक दर्शन हुआ है, क्षणिक राजा की बात करते हैं ना, हाँ चौथे में सम्यक तो क्षायिक हुआ है। सम्यक तो क्षायिक हुआ तो ज्ञान, ये तो तीनों का जो है ना क्षायिक कब होना उसका अलग अलग है, वेरिएशन है। तो चौथे गुणस्थान में किसी को पांचवें, किसी को छठे, किसी को सातवें में क्षायिक का प्रारंभ होता है, यानी ज्ञान क्षायिक, सॉरी सम्यक तो क्षायिक होता है, परंतु क्षायिक ज्ञान सबको कब होता है?
केवल
ज्ञान होने, यानी तेरहवें गुणस्थान। केवल ज्ञान कहो या क्षायिक ज्ञान कहो एक ही बात है, वो भिन्न भिन्न नहीं है। केवल ज्ञान को ही क्षायिक ज्ञान कहा है। तो जो सम्यक तो संबंधी क्षायिक भाव है वो चौथे गुणस्थान से हो सकता है। चारित्र क्षायिक कब होगा? क्षायिक चारित्र छठे सातवें, हाँ
नहीं, बारह
गुणस्थान। मौन का पूरा क्षय होना चाहिए। मौन का उदय कहाँ तक है? उदय, उदय सूक्ष्म लोभ का उदय कहाँ तक है? दसवें गुणस्थान तक। अभी गुणस्थानों का अभ्यास होगा अभी, हाँ तो दसवें गुणस्थान तक है, और दसवें गुणस्थान तक है, और बारहवें तक, बारहवें में उसका पूरा क्षय है।
कैसे हो सकता है लेकिन?
हाँ, आपका प्रश्न है ऐसे कैसे हो सकता है? देखो, सम्यक्त्व में बाधा रूप कर्म कौन सा है? सम्यक्त्व में बाधा डालने वाले कर्म कौन से, कौन कौन से सम्यक्त्व में बाधा डालने वाले? मोहनीय में भी दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग, ये सात कर्म जो है वो सम्यक्त्व को क्षायिक नहीं होने देते। क्षायिक की बात चल रही ना, यानी वो पूर्ण, उनका पूर्ण क्षय होगा तो क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होगा। तो क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है तो क्या होता है? अनंतानुबंधी के चार और दर्शन मोहनी की तीन प्रकृतियां सत्ता में से पूर्णतः नाश हो जाती है, तब उनको कहते हैं हम क्षायिक सम्यक्त्व। फिर उनको फिर मिथ्यात्व में जाने का प्रसंग ही नहीं है, क्योंकि वो कर्म ही नहीं है। परंतु ज्ञानावरण तो चल रहा है अभी, वहां ज्ञानावरण का कोई क्षय नहीं होता। ज्ञानावरण का क्षय तो बारहवें गुणस्थान में होगा, बारहवें के अंत तक तो ज्ञानावरण है। जब तेरहवें गुणस्थान में जीव जाएगा तब हम कहेंगे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वीर्यांतराय का क्षय हो गया। ख्याल में आता है सल्लाबेन? प्रत्येक गुण का कार्य जैसे अलग है, वैसे ज्ञान, ये जो कर्म है उनका भी अपना अपना कार्य अलग होता है। उनका भी क्षय कहाँ होता है, कौन से भावों से होता है, उसकी भी बात अलग अलग है।
जब क्षायिक समय दर्शन होता है ना, तो क्षायिक भाव,
क्षायिक भाव शुरू हुआ है,
क्षायिक भाव चाहिए, फिर समय दर्शन उसका, उसका जो ज्ञान भी है वो भी क्षायिक कहीं का तो होती
है? नहीं होता, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि क्या है, हमें जैसा लगता है वैसा वस्तु स्वरूप नहीं होता। हमें ऐसा ही लगता है ना बेन, क्या बहुत सारी बातें हमको लगती है, हमें ऐसा लगता है शरीर ही मैं हूँ, और फिर शरीर को देखो सम्यक तो हो गया है और ज्ञान सम्यक हुआ है परंतु परिपूर्ण नहीं हुआ है।
नहीं,
उसको सम्यक ज्ञान कहो,
साधन ज्ञान कहो,
सम्यक ज्ञान कहो, क्षायिक ज्ञान मत कहो, सम्यक ज्ञान है। देखो, सम्यक श्रद्धा के साथ, सम्यक ज्ञान के, सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान भी सम्यक हुआ और चारित्र भी सम्यक हुआ है, परंतु क्षायिक नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है, नहीं तो चौथे गुण स्थान वाले श्रेणिक राजा को केवल ज्ञान है मानना पड़ेगा। केवल ज्ञान है कि उनके श्रेणिक राजा को अभी केवल ज्ञान है कि नहीं है? पर पहले नरक में है अभी, परंतु सम्यक ज्ञान है उनको।
तो ये शाही समित्व
क्यों कर दिए ज्ञान के?
शाही समित्व मतलब इरिवर्सिबल समित्व है।
हाँ, शाही समित्व का अर्थ होता है उनके प्रतिपक्षी कर्मों का पूर्णतः क्षय कर देना। उपशम समित्व में क्या है, वो दबाए है प्रतिपक्षी कर्म कुछ काल के लिए, देर इज अ लिमिट, फिर दोबारा उसके अन्य उसकी वेरिएशन हो सकती है। और क्षय उपशमिक में क्या है, अभी कुछ उसका कर्मों का जो कोई वहां वेरिएशन चलते हैं, एक सम्यक प्रकृति का उदय होता है और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक ये जो मिथ्यात्व प्रकृति है वो वहां उसका उदय नहीं रहता है। ये जो क्षयोपशमिक की परिभाषा है या कर्मों की जो बातें हैं वो सारी गुणस्थान में आने वाली है। हम अभी भावों पर ज्यादा चर्चा करेंगे ना, तो हमने अपना स्टेटमेंट क्या होता है, तो जो क्षायिक समकीति है उनके भी क्षायिक भाव है, वो तो चौथे पांचवें छठे सातवें गुणस्थान से भी शुरू हो सकता है। ये क्षायिक चारित्र के बिना कोई अरिहंत नहीं है। अरिहंतों को तो क्षायिक चारित्र है, क्यों? क्योंकि मोहनीय का पूर्ण क्षय हो गया है। ये जो वीतराग छद्मस्थ जो है बारहवें गुणस्थान वाले भी, उनका भी कैसा है चारित्र? चारित्र मोहनीय का पूर्ण क्षय हो चुका है। तो वहां भी कहते क्षायिक चारित्रवंत अरिहंत और सिद्ध होते हैं। अरिहंत और सिद्धों को क्षायिक चारित्रवंत कहा है। और क्षायिक ज्ञान केवल ज्ञानी है, अरिहंत सिद्ध है। अब कहते हैं यानी वो क्षायिक भाव सब में अलग अलग, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र और क्षायिक ज्ञान दर्शन क्षायिक वीर्य आदि जो है, क्षायिक के नौ भाव है, तो वो अलग अलग गुणस्थानों में प्रकट होते हैं। इतना हमको यहां जानना है। और अंत में जो है औपशमिक भाव जो है, तो जब जब धर्म की शुरुआत होती है तो धर्म की शुरुआत औपशमिक भाव से ही होती है। धर्म की शुरुआत होना यानी क्या होना? सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, कोई अनादि से मिथ्या दृष्टि जीव है और उसको सबसे पहले सम्यक दर्शन होता है, तो उस सम्यक दर्शन को कौन सा कहते हैं हम, वो कौन सा टाइप है सम्यक दर्शन का? हाँ, औपशमिक सम्यक्त्व। वहां कर्मों का उपशम पाया जाता है। अभी हमने जो सात कर्म देखे थे ना, अनंतानुबंधी के चार और अनादि वाले के, तो एक मिथ्यात्व ही कर्म है। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति तो बाद में बनती है। तो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को एक मिथ्यात्व प्रकृति और अनंतानुबंधी की चार, ये सम्यक्त्व में बाधा डालने वाले कर्म है, उनका उपशम होता है। कुछ काल के लिए अंतर्मूर्त के लिए वो दबे रहते, उनका उदय नहीं होता है। और उस काल में जीव को यहां जो भाव की उत्पत्ति होती है अपने स्वयं की योग्यता से, तो उसको कहते हैं औपशमिक सम्यक्त्व। तो धर्म की शुरुआत औपशमिक भाव से होती है। वहां भी औपशमिक सम्यक्त्व समझना, तो जैसे औपशमिक सम्यक्त्व है वैसा अन्य कोई औपशमिक भाव आपने सुना है? औपशमिक सम्यक्त्व है ना, एक भाव औपशमिक सम्यक्त्व है, ऐसा अन्य कोई औपशमिक भाव आपने सुना है कि नहीं सुना? औपशमिक ज्ञान सुना है कि नहीं सुना कभी? औपशमिक ज्ञान होगा कि नहीं किसी को? ज्ञानावरण का उपशम हो गया, नहीं नहीं क्षयोपशमिक में
एक बार उसका क्षय और औपशमिक,
नहीं क्षय और औपशम मिलकर वो अलग टाइप का होता है, वो ऐसा होता नहीं, उसको कहा नहीं है। ज्ञान का उपशम होगा, औपशम तो क्या होगा, ज्ञानावरण कर्म का उपशम होगा। देखो जब ज्ञानावरण का क्षय होता है तो अनुदय होता है, हाँ, तो केवल ज्ञान होता है। तो जैसे हमने औपशमिक सम्यक तो देखा, क्या देखा, दर्शन मोहनी आदि का जो उपशम हो जाता है, दब जाते हैं, तो यहाँ सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। वैसे ज्ञानावरण का उपशम होने जाने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, ऐसा कभी होता है कि नहीं होता? एक अंतर्मूर्त के लिए केवल ज्ञान हो जाए कल अभिन क्या होगा? हाँ, ये हमें अभी सराग जीव है, रागी द्वेषी कषाय वाले है, और ज्ञानावरण का उपशम कर दे और अंतर्मूर्त के लिए सर्वज्ञ हो जावे, जैसे है ना, सात दिन के लिए राज मिल गया वो बलि को, तो क्या उसने क्या कर दिया? तो ऐसे हमें थोड़े काल के लिए सर्वज्ञता प्राप्त हो जाए तो सब जान लेंगे कौन हमारा शत्रु है, मित्र है, किसके कौन से धर्म जन्म के कौन साथी है। और ये राग द्वेष तो बढ़ जाएगी क्यों, अभी रागी द्वेषी अवस्था में कोई ये शस्त्र अस्त्र की निर्मिति होती है ना, और जग में क्या क्या हो रहा है अभी इस दुनिया में हम जानते हैं कषायों के कारण क्या क्या होता है, तो ज्ञानावरण का कभी भी उपशम नहीं होता। तो उपशम किस किस का हो सकता है, औपशमिक भाव किस में लगते हैं, एक तो औपशमिक सम्यक्त्व और दूसरा कौन, अभी किसी ने बताया यहां औपशमिक दूसरा क्या होता है बेन, औपशमिक चारित्र, यानी जो उपशम श्रेणी चढ़ता है ना, और चारित्र मुनि को उपशम करते करते ग्यारहवां गुणस्थान प्राप्त होता है तब हम कहेंगे वो औपशमिक चारित्र होता है। जैसे हमने क्षायिक चारित्र देखा ये बारहवें गुणस्थान में होता है, वैसे वहां ग्यारहवें में औपशमिक चारित्र होता है। इस तरह से हमने ये पांच भावों की चर्चा की है। फिर हमने फिर दोबारा देखते हैं कि पारिणामिक भाव सभी जीवों में होता है, संसारी में भी और मुक्त में भी। औदयिक भाव है वो सभी संसारी में पाया जाता है, मुक्त जीवों में नहीं पाया जाता। क्षौक्षमिक भाव है सभी छद्मोस्तों में पाया जाता है, परंतु अरहंतों में कोई क्षौक्षमिक भाव नहीं है। क्षायिक भाव है तो क्षायिक भाव तो चौथे में वो क्षायिक सम्यक तो हो सकता है, वे अलग अलग गुणस्थानों में अलग अलग क्षायिक भाव प्रकट होते हैं, उसकी भी हमने विस्तार से चर्चा की। और औपशमिक भाव में देखा था कि जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है उसको सबसे पहले में पहले औपशमिक भाव यानी औपशमिक सम्यक तो प्राप्त होता है और धर्म की शुरुआत होती है। तो इसलिए देखो अनादि से जो किसी जीव को धर्म की शुरुआत नहीं थी और उसने धर्म की शुरुआत की है, इसलिए औपशमिक को पहले रखा हा? और सूत्र में भी क्या बताया, औपशमिक क्षायिक भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वम औदयिक पारिणामिक। इस तरह से हमने वो नीचे से देखा पारिणामिक किसमें होता है, उदय किसके होता है। तो अभी एक छोटा सा प्रश्न है, सिद्धों में कौन कौन से भाव है इसमें से, भाई आप प्रयत्न, हाँ पारिणामिक भाव है क्या, एक अकेला पारिणामिक भाव सहित कोई जीव होता है, अकेला पारिणामिक भाव हो ऐसा कौन कौन सा जीव है, सिद्ध भगवान। आप क्या कहते हैं शिल्पा जी, आरंजन बेन,
सिद्ध को दो क्षायिक भाव भी
हैं। हाँ सिद्धों में क्षायिक भाव भी होगा, केवल ज्ञान है ना उनके, उनके तो क्षायिक ज्ञान है, क्षायिक दर्शन है, क्षायिक वीर्य यानी वो पांचों है, उनके नौ के नौ क्षायिक भाव है। तो सिद्धों में भी दो भाव हो गए, क्षायिक भाव और पारिणामिक भाव। अरिहंतों में कितने भाव हो गए, हाँ बहुत अच्छा, क्योंकि हमने देखा औदयिक है, गति है और सिद्धत्व है, तो अरिहंतों में औदयिक है, हाँ क्षायिक है और पारिणामिक है। इस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं। तो बारहवें गुणस्थान भी नीचे नीचे आएंगे हम, तो बारहवें गुणस्थान वाले को कौन से हो गए, हाँ पारिणामिक है, हाँ औदयिक है, अभी बारहवां गुणस्थान है तो ज्ञान कौन सा है, हाँ क्षायोक्षमिक भाव है, और बारहवां गुणस्थान है तो क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र के बिना नहीं होगा वहां पर, हाँ तो क्षायिक भाव भी है। बारहवें गुणस्थान वाले को औपशमिक भाव है कि नहीं, होगा, कौन सा होगा औपशमिक पता नहीं, अच्छा कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी हमारा अभ्यास नहीं है ना, जब अभ्यास हो जाएगा तो आप स्वयं बता सकेंगे। औपशमिक यानी थोड़े काल के लिए दबाना और क्षायिक यानी पूर्ण नाश करना। तो बारहवें गुणस्थान से अभी उसने मोह का पूर्ण नाश किया है तो किसको दबाया है, चारित्र का तो पूर्ण नाश किया है, हाँ तो बारहवें गुणस्थान में कोई औपशमिक भाव नहीं है। अभी अपना भी समय हो चुका है, अब यहीं हम रुकते हैं क्योंकि आगे का विषय चलेगा। जब गुणस्थान की ज्यादा आपको पहचान हो जाएगी तो आपको ही इन प्रश्नों का उत्तर समझ में आएगा। अभी यहीं रुकते हैं। लो 2400 भगवान की जय।